धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वैच्छायाणं। नमो लोए सौवसाहूणं। लोयालोयपयासं गोदमथेरं पुणोजिनं वीरं नखेत्तसुत्तं जहो वये संपयासेमो। आचार्य श्री विभीषण स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलिया आचार्य। इसमें जो प्रथम जीव स्थान है, अभी उसका क्षेत्रानुगम का प्रकरण शुरू है। क्षेत्र संबंधी अपनी बात चल रही है। 13 नंबर पेज पर आए हैं, उसके पहले अभी हम यहाँ जरा देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। पेज नंबर 11 निकालना, नीचे सबसे नीचे का पैराग्राफ, 8 नंबर के जो गाथा है उसका अर्थ जो लिखा है ना, लोक का विष्कम्भ ने विस्तार 4 प्रकार का है, मिला ऐसा जानना चाहिए, जिसमें से अधोलोक के अंत में 7 राजू यानी सबसे नीचे, मध्यलोक के पास 1 राजू, ब्रह्मलोक के पास 5 राजू और ऊर्ध्वलोक के अंत में यानी सबसे टॉप पर 1 राजू विस्तार जानना चाहिए। ये पूर्व पश्चिम विस्तार है, दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राजू। तो ये जो प्रस्तुत की गाथा किसने की है, तो शंका करने की, क्योंकि शंका करने इतना तो कहा है सामने से ऐसा है, परंतु उसका शेप उसने नहीं बताया। हम जो दक्षिणोत्तर 7 राज्य है उसको स्वीकार नहीं है, उसका क्या कहना है, सर्वत्र गोलाकार है। ये जो 7 राज्य 1 राज्य 5 राज्य उसने व्यास बताया, उसका ऐसा कहना है कि लोकाकाश नीचे अधोलोक जो है वो वेत्रासन के समान, वो मुंडा होता है ना गोल स्टूल जैसा, वो केन का बनाते देखो गोलाकार है, हाँ नीचे भी गोल और बीच में भी गोल ऐसा, हाँ पहले उसका पिक्चर बना है देखो, शुरुआत में जहाँ चित्र लिखे ना, 13 नंबर है ना पेज, चित्रों की अलग से सूची है ना, कहाँ गया, अच्छा विषय सूची के पहले नहीं है, बाद में, हाँ 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 विषय सूची के पहले हैं, पहले हाँ। ये पृष्ठ 13 उन्होंने वो रेफरेंस वगैरह बताया, पृष्ठ 12 पृष्ठ 13 के लिए रेफरेंस है, ये इसका नंबर पृष्ठ 13 नहीं है, ये विषय सूची के बाद की बात, ये पेज नंबर है। देखो शंकाकार की शंका क्या है कि लोक मृदंगाकार है, मृदंगाकार उन्होंने यहाँ सेकंड जो फिगर है ना, नीचे भी गोल बीच में भी गोल ऐसा, ये मृदंगाकार भेंट है, यानी केवल इसका व्यास उन्होंने 7 राजू 1 राजू 5 राजू और 1 राजू बताया, परंतु अगर ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो लोकाकाश की जो एरिया वो कैलकुलेट नहीं होती, वो तो कम आ जाएगी, उसकी बात यहाँ हो रही है। लोकाकाश कैसा हमें मालूम है, वो तो जैसे पूर्व पश्चिम ये विस्तार है और दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राज्य, यानी वो चौकोर नीचे चौकोर आ जाएगा, इसमें उसको गोल माना है, गोल माना है तो उसका क्षेत्र कम होगा ही होगा, मैंने सात राजू के व्यास वाला जरा वो पाठी देना। नीचे की अगर एरिया देखते, बाकी तो छोड़ दो, नीचे में कोई ऐसा सात राजू भाई सात राजू का स्क्वायर है और उसके अंदर सात राजू व्यास वाला गोल है, तो एरिया किसकी कम होगी? गोल वाले की। और ऐसे वो ऊपर तक इमेजिन कर रहा है, यानी उसने जो कही कि वो एरिया घटित नहीं होती, यही अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। अभी जो हमने देखा ना, सात राजू है और वो नहीं, वो तो गोलाकार मान रहा है, नहीं है। देखो शंकाकर फिर से जरा पीछे और जाते हैं, पेज नंबर 11 पर शंका जो पूछिए ना, यदि यहाँ पर इसी घन लोक का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि घन लोक कितना है तो जगत श्रेणी का घन, ऐसी वाली वहां पर बात की थी, सात राज्यों के घन प्रमाण लोक होता है, ये बात 11 पेज के शुरुआत में स्टार्टिंग में बताई थी, उस पर शंका है। मिला ना शंका कहा है कि घनलोक का अगर ग्रहण किया तो ये लोकाकाश का ग्रहण नहीं होता, क्यों? क्योंकि उस लोक में सात राजू के घन प्रमाण वाले क्षेत्र का अभाव है। ऐसा ये क्यों कह रहा है? उसने वो सारा मृदंगाकार गोल माना है, नीचे भी गोल है, वो ऐसा ही गोल बीच में एक राजू वाला व्यास वाला होता है, वही गोल ऊपर पांच राजू व्यास वाला होता है, ये उसकी कल्पना है, मान्यता है, इसलिए वो अपना ही प्रस्तुत कर रहा है मन के नीचे वेत्रासन के समान वो मान रहा है। समझ में उसकी भूल क्या है? अधोलोक पूरा गोलाकार ही नीचे और वो ही गोल छोटा होता हो तो ऊपर एक राजू व्यास वाला हो रहा है, ऐसा उसका कहना है, उसको वो वेत्रासन कह रहा है, यानी वेद के मुंडे के समान, मध्य में झल्लरी के समान, यानी वहां तो मध्य में भी गोल खाली जैसा गोल मान रहा है, वैसे एक राजू भाई सात राजू एरिया है वैसा वो नहीं मान रहा, ऊपर मृदंग के समान आकार वाला, मृदंग कैसा बीच में गोल बड़ा होता है और बाजू दोनों बाजू टेबल, ऊर्ध्व लोग उसको अकेला मृदंग के समान मान रहा है। तो इसकी एरिया सात राजू के घन प्रमाण नहीं होती और उसके लिए वो सारे प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी इसकी बात 12 नंबर पेज पर आते हैं कि शंका का परिहार करते हैं, वहां से फिर पढ़ेंगे हम 12 नंबर के पेज से। अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं, यानी वो शंका जो पूछी उसका वो जो मान्यता उसको रूल आउट करते हैं। इस प्रकृत सूत्र में लोक ऐसा पद कहने पर, सूत्र कौन सा हुआ था? पेज नंबर 10 पर जो 2 नंबर का सूत्र था, ओघे ने मिठाई इट्ठी केवड़ी खेते तो सव्व लोगे, सर्व लोक में, वहां जो लोक कहा है तो सूत्र में जो लोक ऐसा पद कहने पर, ऐसा शब्द उसका अर्थ क्या है? पांच द्रव्यों के आधारभूत आकाश का ही ग्रहण किया है, अन्य का नहीं, क्योंकि लोक पूर्ण समुद्रांतर्गत केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्व लोक में रहते हैं, इससे उक्त बात सिद्ध होती है। ये जो आगे आने वाला सूत्र है उससे ही बात सिद्ध होती है। यदि लोक सात राज्यों के घन प्रमाण नहीं है तो लोक पूर्ण समुद्रघात केवली लोक के संख्यात विभाग में रहते हैं, इस प्रकार कहना चाहिए, क्योंकि ये मृदंगाकार इमेजिन करने से लोक का संख्यात भाग होता है। यदि वो लोकाकाश का आकार अलग और लोक यानी जहाँ पांच द्रव्य रहते हैं अन्य उसका आकार अलग मानते तो वो बात घटित नहीं हो रही, और मृदंगाकार लोक के प्रमाण को देखकर अर्थात उसकी अपेक्षा से लोक पूर्ण समुद्घात केवली का घन लोक के संख्यात विभाग में रहना सिद्ध भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? यदि हम मृदंगाकार वो गोलाकार इमेजिन करेंगे तो लोक का वो संख्यातवा भाग हो जाएगा, क्योंकि साइड से वो तो स्क्वायर एरिया कट हो जाएगी सारी, क्योंकि गणना करने पर मृदंगाकार लोक का प्रमाण घन लोक के संख्यात विभाग पाया जाता है, वो इस प्रकार है। यानी अभी इसको मृदंगाकार मानकर उसके एरिया निकाल रहे, यहाँ तो बात ख्याल में। 14 राजू प्रमाण आयत, 1 राजू प्रमाण विस्तृत और गोल आकार वाली, ऐसी मृदंगाकार लोक की सूची को लोक के मध्य से निकालकर पृथक स्थापित करना चाहिए। अभी यहाँ क्या कहना चाहते हैं लोग का ऐसा, अभी हम ये इक्वल है परंतु हम मान लेते हैं ये इक्वल होने पर भी हम मान लेते हैं कि ये नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है। अब क्या करना है उसमें, सेंटर में मान लेते हैं ये एक राजो प्रमाण जो त्रसनाली गोलाकार मानी उन्होंने, उसमें से निकाल ले रहे, बीच वाला ये गोलाकार एरिया निकाल कर अलग रख रहे, यानी बीच में तो पोला हो गया ना, अभी उसके एक बाजू कट करके उसको स्प्रेड आउट कर सकते, ये इमेजिन हो रहा है ना कुछ। जैसे ये अपनी ये बात है, नीचे ऐसा है और ऊपर तक ऐसा है, तो ऐसी गोल एरिया हमने बीच में से निकाल ली, तो बीच में से निकाल ली तो इसको खोलकर हम इसको स्प्रेड कर सकते, अभी उसी की बात यहाँ हो रही है। देखो 14 राजो प्रमाण आयत यानी लंबी, एक राजो प्रमाण विस्तृत यानी डायमीटर वाली और गोल आकार वाली, ऐसे मृदंगाकार लोक की सूची को यानी सूची का ये वर्णन चल रहा है, बीच वाली लोक के मध्य से निकाल करके पृथक स्थापित करना चाहिए, उसके एरिया बाद में निकालेंगे। इस प्रकार से स्थापित करके अब उसके फल अर्थात घनफल को निकालने का विधान कहते हैं, वो इस प्रकार है। मुख में तिर्यक रूप से गोल आड़ा उसका गोलाकार है और आकाश के एक प्रदेश प्रमाण बाहल्य वाले इस पूर्वोक्त सूची की परिधि, यानी वो तो गोल एरिया जो अभी हमने निकाली ना ऐसे पेन जैसे हमने ऊपर से नीचे से निकाले, तो उसके एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो गोल क्षेत्र है ना नीचे का, अभी इसके ऐसे डायमीटर कितना है, एक राजू डायमीटर एक राजू है ना इसका, देखो तो उसके परिधि पहले निकालेंगे, परिधि के लिए वो सूक्ष्म परिधि निकाले, सामान्य से परिधि निकालते तो तीन राजू कहते बिल्कुल स्थूल तीन गुना, जैसे हमारे गणित में भी हम 22/7 पाए कहते हैं वैसे ही सूक्ष्म परिधि उन्होंने निकाली। ये निकालने की विधि आगे 14 नंबर की गाथा में आएगी। ऐसा भी हम कहते हैं कि इसके वर्ग को 10 से गुणा करो और सबका वर्गमूल निकालो, या डायरेक्ट इसके डायमीटर को 10 के वर्गमूल से गुणा करो, बात एक ही है। तो उन्होंने वो विधि तो बाद में देखेंगे हम, अभी उसका उत्तर यहाँ बताया। परिधि एक राजू प्रमाण डायमीटर वाले की परिधि कितनी आती है, परिधि यानी सरकमफेरेंस 371/113, यानी तीन से थोड़ा ज्यादा है ना, हम जैसे 22/7 कहते हैं सात्विक 21 और आगे, वैसे यहाँ पर लेना इतनी होती है, ये आगे हम देखने वाले हैं। इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजु विष्कम्भ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल का प्रमाण इतना होता है। देखो अभी हम क्या कहते हैं, ये हमारा गोल सरकमफेरेंस है, यानी वो बीच वाली नली का एरिया निकाल रहे, तो उसका डायमीटर एक राजु था, उसका सरकमफेरेंस 371/113, यानी करीबन तीन राजु है ना, तो अब हमें लोक के अधो एक मिनट, इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजु विष्कम्भ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल का प्रमाण इतना होता है। ऐसा किया ना हमने, दो भाग किए ना उसके, क्योंकि निकालने वाले तो उसके दो भाग कर दिए, 42 पर पेज 42 पर हमने यहाँ लिखा है, देखो 42 पेज निकालना, वो तो केवल मंडलाकार कैसे निकालना उसकी बात है ना, वहां पर 371/113 कैसे निकाला उसकी बात है यहाँ पर, उसमें और ज्यादा कुछ बातें नहीं है, इतनी सरकमफेरेंस कैसे निकालना है उसकी बात है। यानी हम त्रिज्या से गुणा करते हैं, आपको याद होगा तो, स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालने की पद्धति, और फिर उसका आधा किया है उन्होंने। देखो देखो, परिधि को त्रिज्या से गुणा करते तो हमको मिलता है ना,
हाँ।
एरिया मिलता है। देखो इसको अगर हम स्प्रेड करते हैं, ये पूरी एरिया कवर कर, केवल सर्कमफेरेंस की एरिया निकालनी है तो कैसे निकलेगी हम, ये इतनी, ये उसका डायमेंशन है, परंतु ऐसे डायमेंशन कितना है, त्रिज्या जितना है, त्रिज्या यानी हाफ डायमीटर, परंतु परिधि को भी आधा किया क्योंकि वो दो हाफ में उनको कैलकुलेट करना है। तो इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजू विष्कंभ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल का प्रमाण इतना है होता है। अब हमें लोक के अधोभाग का घनफल लाना इष्ट है। अभी हमने बीच वाली वो नाली निकाल के अलग रखी है, यानी अभी वो बीच में, अभी क्या हो, ये नाली अलग निकाली है, तो बीच में ऐसा पोला है और ऐसा बाजू में वो सॉलिड है यानी घन, ऊपर तो थिन है एक लाइन जितना और नीचे उसकी एरिया इतनी है। देखो अभी हम आधा ही इमेजिन करते, ये आधा अंदर से निकाल लिया, ये आधा ऊपर से निकाला है, तो ऊपर तो प्रदेश प्रमाण थिन एरिया है क्योंकि बीच वाली निकाल ली है, अंदर से कुछ नहीं है। हम अब ये हाफ सर्कल इमेजिन करो, पेपर को हाफ सर्कल में ऐसा हम डाउन करेंगे,
ये क्या त्रस नाली है,
बीच वाली त्रस नाली है। अब ये हमको अधोलोक देखना है, आधा अधोलोक एक बाजू का। अब ये है नीचे सात राजू एरिया, ऐसे नीचे ये पूरा सात राजू एरिया था, उसमें से एक राजू निकाल लिया तो रह गए छह राजू, इधर तीन राजू, इधर तीन राजू, यानी अभी कैसा होगा, यहाँ से यहाँ तीन राजू है और ऊपर ये टेपरिंग होते होते वन प्रदेश थीन हो गया, समझ में आती है ना। अभी ये ऐसा अगर हम खोलेंगे तो ये आधा सर्कमफेरेंस तो यहाँ होगा, जो ऊपर का एक राजू का सर्कमफेरेंस था वो आधा सर्कमफेरेंस तो इधर होगा, ऐसी हाइट उसकी सात राजू है। अब यहाँ पर ये जो ब्रॉड हो जाएगा, नीचे तीन राजू प्रमाण उसकी विड्थ है, नीचे तीन राजू प्रमाण, यहाँ से ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, परंतु यहाँ पर भी वो ऐसा सॉलिड होगा ना, ख्याल में आती है ना बात। ये सिंगल लाइन थी और सिंगल लाइन से हमें नीचे ऐसा ट्रायंगुलर हो जाएगा क्योंकि नीचे का तीन राजू है और ऊपर का ऐसा वन प्रदेश थिन है, यानी तीन राजू से लेकर एक प्रदेश तक वो ऐसा टेपरिंग है, क्योंकि हमको नीचे बीच वाला निकाल दिया है इसलिए ऐसी है, यानी सेंटर में ऐसा दिखेगा, ये आधा डायमीटर, ये सॉरी आधा सर्कमफेरेंस और सात राजू। हमने ऐसा था ना, ये पूरा पूरा गोल का, अभी हम आधा ही गोल इसको इमेजिन कर रहे हैं, आधा सर्कमफेरेंस यहाँ है, नीचे भी आधा सर्कमफेरेंस अंदर है, परंतु उसके नीचे के बेस कितना है, तो तीन राज्य एक बाजू, सर्वत्र तीन राज्य है, कहीं से भी देखो तो तीन राज्य थिकनेस है और ऊपर वो टेपर हो गया है, ये समझ में आई बात। अभी इसको पढ़ेंगे हम, यानी अभी जो नीचे का जो अधोलोक का प्रमाण ये निकाल रहे हैं, स्क्वायर एरिया उसके घनफल निकाल रहे, आवाज आ रही है, हाँ। देखो नीचे से पांचवी लाइन, छठी लाइन, इस परिधि के प्रमाण को आधा, ये तो हो गया ना, उसके नीचे अब हमें लोक के अधो भाग का घनफल लाना इष्ट है, इसलिए उस क्षेत्रफल को सात राजुओं से गुणा करने पर सात राजू प्रमाण लंबी और एक राजू प्रमाण चौड़ी उक्त गोल सूची का घनफल इतना होता है। ये समझ में आई क्या बात कह रहे हैं, सात राजू, पहले तो हमने क्या किया, इसकी एरिया निकाली, इस एक्चुअली फिर से मैं आपको पार्टी पर बताती हूँ, स्कूल की कुछ बात याद है क्या आपको, क्या भूल गए सब, गोल एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? घनफल इंटू घनफल नहीं, सरकमफेरेंस इंटू परिघ इंटू क्या करते हैं? त्रिज्या का हाफ त्रिज्या, मेरे ख्याल से डायमीटर का चौथा भाग होगा, तभी तो ये बात है। एक सेकंड, गोल एरिया की ये कैलकुलेट करने की बात, त्रिज्या का आधा ना, व्यास का चौथा भाग ना, इसीलिए इसने परिघ को भी आधा करो और त्रिज्या को आधा करो ऐसा कहा। फिर से या ऊपर ऊपर का मुख में नीचे से चार और चार, मुख में तिर्यक रूप से गोल आकाश के एक प्रदेश प्रमाण बाहल्य वाली पूर्वोक्त सूची की परिधि इतनी होती है, यानी वो परिधि निकाली, परिधि के प्रमाण को आधा और राजू को भी आधा, उसका अर्थ क्या है? राजू को चौथा करो, यानी हमें स्कूल में जो हम पढ़े थे, मैंने जरा गलत बताया, आधे के नहीं एरिया निकाले, पूरी के ही, नहीं नहीं नहीं, ये पूरे का इसकी एरिया निकाल रहे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल रहे, तो परिधि मल्टीप्लाइड बाय व्यास का चौथा भाग, उसके लिए उन्होंने अलग पद्धति से परिधि को आधा करो और व्यास को भी आधा करो,
वापस दो से गुणा करो,
यही होगा ना, उसके जो परिधि उसको चार से व्यास के चौथे भाग से गुणा करो, बात वही है। परिधि हमारी कितनी है देखो, 371 बटे 113। अभी इसका आधा करो और एक राजू का आधा करो, बात एक ही नहीं, राजू का ही चौथा भाग से उसको गुणा करो, बात एक ही है। तो नीचे वो 113 को चार से गुणा करने पर हमें क्या मिला है? अभी गोल एरिया का क्षेत्रफल मिला है, जो बीच वाली हमने नली निकाली है बाजू में, उसका क्षेत्रफल मिला। तो अभी हमने जो बीच वाली जो निकाली ना नली, उसका घनफल कितना होगा? तो ये गोल का क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाय हाइट पूरी यानी इंटू 7, कुछ ख्याल में आ रही बात? देखो गोल एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, सरकमफेरेंस इंटू 1/4 डायमीटर, यहां लिखो ना गोल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अलग बात है, घनफल अलग बात है। गोल का तो हमने सिंगल सरफेस लिया एक राजू वाला, गोल का क्षेत्रफल कितना होगा? परिधि इंटू व्यास डिवाइडेड बाय 4। अब ये गोल का है वो जो टॉप मोस्ट 4, उन्होंने अलग पद्धति से बताया, उन्होंने बताया परिधि का भी आधा करो और व्यास का भी आधा करो, बात वही है, यहां तक ख्याल में आई बात? अभी ये जो गोल हमने निकाली बीच वाली नाली, जैसे पेंसिल है ऊपर से नीचे तक, तो पहले हमने इसका एरिया निकाला, अब हाइट से गुणा करो तो पूरी नली का घनफल मिलेगा, बाद में बाजू का कैलकुलेट करेंगे। तो घनफल कितना होगा? गोल का क्षेत्रफल निकाला, अभी नीचे की जो त्रस नाली वाली उनकी एरिया उन्होंने मानी हुई शंका कारण, उसका घनफल कितना हो गया? क्षेत्रफल इंटू हाइट। यानी ऊपर उनका कितना आया था? परिधि इंटू डिवाइडेड बाय 4 किया था ना उन्होंने, 371 बटे 452 उसका उत्तर आया था, और उसको 7 राजू से गुणा करेंगे हम, तो ये हो गया 371 बटे 452 इंटू 7 करके देखो आप, तो यही प्रमाण आएगा, यानी आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो देखो 5 × 337 बटे 452 आ गया, यहां तक समझ में आई बात? ये सारा क्या निकाला हमने? बीच वाली जो एक राजू वाली नली हमने बाजू निकाली गोलाकार, उसका घनफल आया, अब जो बाजू का रिमेनिंग है उसका घनफल निकालेंगे।
बाजू का मतलब इतना साल के साइड का ना?
साइड का हाँ। साइड का कैसे, ऊपर तो थिन ही था हाँ। नीचे उसको बेस बड़ा था, अब नीचे के बेस से लेकर ऊपर तक टेपरिंग उसका निकालेंगे। उसकी भी देखो, ये अंदर वाली हमने जो सॉलिड चीज थी वो निकाल दी, अभी उसके हाफ करीब एक बाजू का हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फिर सूची रहित 14 राजू लंबे लोक रूप क्षेत्र के मध्य लोक के पास से दो खंड करके उनमें से नीचे के अर्थात अधोलोक संबंधी खंड को ग्रहण कर। अभी क्या कहना है, ये तो लोक तो पूरा था ना ऐसा, तो हमने वो सात राजू लंबी उन्हीं गोल सूची निकाली थी, वैसे अधोलोक की निकालनी थी। अब यहां से लोक को कट किया तो यहां तो ये गोल वो सूची तो ऑलरेडी निकाली थी, तो अभी क्या ये मान लेते हैं एक राजू गोल वाली निकाली हमने, तो नीचे तो पूरा एक राजू ये है, तो नीचे सात राजू वाला तो गोलाकार है, वहां तक तो पूरा सॉलिड है, तो बीच छोड़ा हुआ है ना सूची को छोड़कर, कितना तीन तीन राजू उसका वलय विस्तार जो होगा वो
तीन
राजू वाला होगा ऐसा। तो दो खंड करके नीचे के अर्थात अधोलोक संबंधी खंड को ग्रहण कर उसे एक ओर से ऊपर से काट कर, यानी ऊपर से नीचे तक काट कर पसारने पर। अभी क्या क्या, ये तो पूरा ऐसा है तीन राजू उसका वलय विस्तार है, बीच वाला पोला है, तो बीच वाला पोला है और यहाँ सारा सॉलिड है, तो वहां तो एक प्रदेश थिन है ऊपर और नीचे इतना हर बार यानी हर जगह से तीन तीन राजू है, तो हम एक बाजू उसकी काटेंगे ऊपर से नीचे तक काटेंगे और स्प्रेड करेंगे। अंदर तो निकाला था, अभी ऊपर तो इतना ही है और नीचे का हमने स्प्रेड किया, नीचे का स्प्रेड किया तो नीचे ऐसा होगा, अंदर तो सरकमफेरेंस जितना है, पूरा स्प्रेड किया ना, अंदर सरकमफेरेंस जितना और बाहर सात राजू की परिधि, अंदर एक राजू की परिधि बाहर सात राजू की परिधि। अब इमेजिन करो इसको हाँ? देखो ऊपर ऊपर तो ऐसा ही था थिन, ऊपर थिन था और नीचे ऐसा हो गया, पूरा स्प्रेड किया ना हमने, एक सरकमफेरेंस ऐसा पूरा हो गया, आधा भी नहीं किया, पूरा सरकमफेरेंस लिया, नीचे अंदर से तो पूरा सरकमफेरेंस है परंतु अभी बाहर की ओर ऐसा वो बाहर का भी सरकमफेरेंस पूरा खोल दिया है, यानी अभी वो ये नीचे कैसा बेस दिखेगा, देखो नीचे का बेस केवल इमेजिन करो, यहाँ एक राजू का सरकमफेरेंस और यहाँ सात राजू का सरकमफेरेंस, ख्याल में आई ना बात, सरकमफेरेंस अभी उसकी ऐसी विड्थ कितनी होगी, तीन राजू, हर जगह विड्थ ऐसे तीन राजू, यानी नीचे का केवल बेस अगर इमेजिन करना है आपको, देखो नीचे का बेस हमने फैला दिया, यानी नीचे का सात राजू का कर, अभी हम वो अपूर्णांकों में मत जाओ, हम तीन गुना करेंगे, गोल एरिया का सरकमफेरेंस तीन राजू मानेंगे आपको समझाने के लिए, फिर इनकी फिगर लेते हैं। तो ये अंदर तो तीन राजू वाली ऐसी थी तो हमने ऐसा स्प्रेड अप कर दिया, तो ये तीन राजू ऐसा हुआ, और बाहरी सूची कितनी थी, पूरी सात राजू का गोल था, तो सात्रिक 21 वहां का होगा सरकमफेरेंस, वो 21 राजू ऐसा फैल गया, ये तीन राजू 21 राजू, और सब जगह उसकी तो तीन राजू उसकी विड्थ है, विड्थ सर्वत्र तीन राजू। अभी इसको ऐसा भी नहीं करते क्योंकि वो तो विड्थ तीन राजू रखनी है, अभी वो तो जैसा कैसा उसका वो इमेजिन करना, यानी ये तीन राजू और 21 राजू और उसकी विड्थ तीन राजू, ये नीचे वाला, अब ये तीन राजू वाला है वो ऊपर तक, ऊपर कैसे पेपर थिन एक ही थी उसको, ऊपर से भी ये इधर भी फैल गया इधर भी फैल गया, क्योंकि ये नीचे का बेस उसका तीन राजू वाला ब्रॉड है, कैसे इमेजिन करना भी आगे पढ़ेंगे। देखिए तेरह नंबर पेज पर है, काट कर पसारने पर सुरूप के आकार के सुपा के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है। यहां तक बात ख्याल में आई ना? हाँ, सुरपाकार जो है ना, तो तल विन्यास उन्होंने बताया ना, और वो सुरपा अधोलोक का सुरपाकार विन्यास जो हमने तीन राजो माना, उन्होंने तीन पूर्णांक एक सप्तमोश वहां लिखा, 22 सप्तमोश हो गया ना, एक का 22 सप्तमोश हो गया और सात का सात गुना 22 सप्तमोश 22 हो गया। देखो ऊपर तीन पूर्णांक एक सप्तमोश और नीचे 22, समझ में आती बात? अब उसको उन्होंने तीन राजो में वो तो अभी स्प्रेड करना है, ये तो पूरा उन्होंने स्प्रेड आउट कर दिया, पर उसमें नीचे का बेस ब्रॉड है और ऊपर थिन है, ये इमेजिन करना है आपको। यहां तक समझ में आई ना बात? और वही नेक्स्ट पेज पर वहां पर भी उन्होंने उसको समझाने की कोशिश कर दी है। उसके उन्होंने ये तो सब गोलाकार को करके उसको स्प्रेड करके वो बताने की कोशिश की है। देखो जरा वो पेज देखना,
पहले वाला।
हाँ, उसके सेकंड पेज पर वहां लिखा, देखो सुरूपाकार विन्यास का यथादर्शन चित्र। अब ऊपर तो सिंगल थिन रखा है और फिर उसको नीचे तक काट कर ऐसा पसार दिया ना, तो नीचे में बेस में तो ब्रॉड हो जाएगा, तो वो विड्थ उन्होंने कुछ बताने चाहिए। अब यहाँ पर उसके राइट साइड में जो आकृति नंबर 6, हाइट तो उसकी 7 राजू है, उसको उन्होंने 7.6 कर दिया, उसको एक्चुअली वो बढ़ जाएगी साइड में क्योंकि एग्जैक्ट हाइट उसकी ऐसी है, तो ऐसा तिरछा वो बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। देखो आकृति नंबर 7, देखो ये तीन मैंने देखा था ना, तीन उसकी ब्रेड थे, परंतु साइड में वो टेपरिंग दिख रही है, तो साइड में जो टेपरिंग दिखाई दे रहे है, पर उसका तो बेस ऐसा दिखेगा, तो बेस भी टेपरिंग हो जाएगा, वो आकृति नंबर में 8 में दिख रहा है। अब आकृति नंबर 9 में देखो, खंड नंबर 2 और 5 का यथा दर्शन, वो कैसा दिखेगा, 5 का और 2 का चित्र कैसा दिखेगा, अभी 5 और 2 एक दूसरे पर फिट करके उन्होंने बताया, उसके एरिया कैलकुलेट की। अब 1, 3, 6, 7 1, 3, 6 और 7 देखो ये जो पीसेस है, 1, 3, 6, 7 को भी एक दूसरे पर फिट करके बताया उन्होंने, उसके जो खंड है वो भी एक दूसरे में फिट कर दिए, तो उसके भी एरिया इस तरह से कैलकुलेट हो जाती है। अब ये बात हम वहां पढ़ेंगे, अलग अलग उसके खंड करके उसको इमेजिन करके एक दूसरे में फिट करके एरिया निकाले। अब यहां पढ़ते हैं पेज नंबर 13 पर आना, भी यहां पर शंकाकार मृदंगाकार लोक को दृष्टि में रखकर यह कथन कर रहा है। उसका भाव यह है कि कितने ही आचार्य अधोलोक का आकार चारों ओर से गोल ऐसे वेत्रासन के समान मानते हैं, नीचे 7x7 राजू का स्क्वायर नहीं मानते, गोल मानते, जो नीचे गोल आकार वाला तथा 7 राजू चौड़ा है और ऊपर क्रमशः घटता हुआ मध्य लोक में गोल आकार वाला तथा 1 राजू चौड़ा है, इसके ठीक मध्य में ऊपर से नीचे तक स्थित 7 राजू लंबी 1 राजू चौड़ी गोल आकार वाली तृष्णाली है, उसको यदि वैत्रासनाकार अधोलोक के बीच में से निकालकर बचे हुए अधोलोक का एक ओर से ऊपर से नीचे तक काटकर पसार दिया जाए तो उसका आकार ठीक सुपा के समान हो जाता है। सुपा देखा है कि नहीं कभी? हाँ हाँ देखा है। इस सुरपाकार क्षेत्र के मुख का विस्तार जो हमने देखा ना करीबन 3 राजो 371/113 इतना है, और तल का विस्तार, अभी तल का विस्तार कैसा किया? 7 राजु व्यास का परिघ है, 7 का परिघ, समझ में आती हूँ? 7 राजु नीचे के गोल का व्यास है 7 राजु, उसको 3 गुना करो ना, 22 सप्तमों से गुना किया तो एग्जैक्ट सूक्ष्म निकालना है तो 22 पूर्णांक 15/113 हो जाते हैं। ये 7 राजु का परिधि होगी, 7 राजु की परिधि, ऊपर 1 राजु की परिधि थी और नीचे 7 राजु की परिधि। इसे मुख विस्तार से अर्थात मुख विस्तार के अंत से लगाकर दोनों ओर 7 राजु लंबा नीचे की ओर छेदने पर और ने ओर छेदने पर 2 त्रिकोण क्षेत्र और 1 आयत चतुरस्र क्षेत्र, इस प्रकार 3 क्षेत्र होते हैं। देखो फिर से, ये यहाँ क्या किया हमने, ऊपर से नीचे छेदा ना उसको, अभी उसका शेप कैसा हुआ? ये ऊपर का जो एक राजु का परिधि हम 3 समझते, उसको 371/113 था, वो बीच वाली काटी हुई बात बता रहे, वो अगर ऐसा नीचे लेते हैं बीच वाली परिधि, परंतु नीचे वो हमने स्प्रेड आउट कर दी, तो नीचे स्प्रेड आउट करके कितना, वो 7 राजु वाली हो गई, तो नीचे ऐसे स्प्रेड आउट कर दी हमने, तो इस ये तो 22 और 3 का हिसाब लगाएंगे, ये तो 7 राजु और ये 3 राजु है ना, और ऐसा हम कैलकुलेट करेंगे तो नीचे का 22 हो जाता है करीबन, 21 ले लो 22 ले लो, तो उसको ये ऐसा तिरछा हो जाएगा, तो ये भी थोड़ी बढ़ जाएगी, ये एग्जैक्ट 7 है, ये ज़्यादा हो जाती, ये इतना है, और इसका भी ऐसा विड्थ भी है ना अंदर तक, ऐसे अंदर तक विड्थ उसकी होगी, ये बात बता रहे हैं। तो इसको एग्जैक्ट करेंगे, एक्चुअली इस एरिया को केवल कैलकुलेट करेंगे तो इसके तो केवल ऐसा 3 इतना ही बड़ा है, ये स्क्वायर ऐसा अगर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये अंदर पीछे की ओर आप देखो, ऐसा 3 है और ऐसा 7 है, मगर वो अंदर भी 3 राजु ऐसा हुआ है, तो ये बीच वाली ऐसे ऊपर 1 पेपर थीन है और नीचे उसका बेस ऐसा स्प्रेड आउट हुआ है, इस तरह से हुआ है, पीछे अंदर है ऐसा इमेजिन करो आप उसको, और फिर बाजू के एरिया और अलग से निकलेंगे। देखो अभी हम इसको पढ़ेंगे, तो 7 राजु लंबा नीचे की ओर छेदने पर 7 राजु लंबा नीचे की ओर छेदने पर 2 त्रिकोण क्षेत्र और 1 आयत चतुरस्र क्षेत्र, इस प्रकार 3 क्षेत्र हो जाते हैं। यानी अभी हम इसको भूल जाते हैं, अंदर क्या दिख रहा है उसको भूल जाते हैं, ऊपर ऐसा था नीचे 7 राजु तक ऐसा है, नीचे की एरिया अगर स्प्रेड आउट की तो इस तरह से हो जाते हैं, 1 आयत और 2 त्रिकोण, वो अंदर का हम उसकी जो चौड़ाई उसको इमेजिन मत करो, अभी तो इतना हो जाए ना सामने तो दिखने पर तो ऐसा हो जाएगा। उक्त प्रकार से बने हुए इन 3 क्षेत्रों में से पहले आयत चतुरस्र आकार वाले मध्यवर्ती क्षेत्र का घनफल निकालते हैं। इस आयत चतुरस्र क्षेत्र का उच्चतम ऊंचाई 7 राजु है, और विष्कम्भ जो ऊपर से एक राजू का सरकमफरेंस था वही है पूरा, तीन राजू ने करीबन 371/113 एग्जैक्ट है, इतने राजू है। ये समझ में आई बात? ये जो बीच वाली एरिया, परंतु बीच वाली अभी नीचे से ऐसे तीन राज्यों तक फैली हुई है ना, उसकी एरिया निकाल रहे ये नीचे से ऐसे, वो तो नीचे ऐसा बेस है तीन राज्यों बाय तीन राज्य, और ऊपर तक ऐसा एक बाजू तो सात राज्य, तो दूसरी एरिया थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना नीचे की। अभी इसके लिए आपको कैसा उदाहरण दे दूं, जैसा ये पट्टी सिंगल रखी एक राज्य बाय सात राज्य, अब ये नीचे क्या हो गया, तीन राज्य बेस हो गया उसका, ये सीधी है और नीचे ऐसा स्प्रेड आउट हो गया, वो नीचे स्प्रेड आउट होंगे, ये तो सात राज्यों से थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तब जाके ऐसा हो जाएगा, यानी वो सात राज्यों में और थोड़ा बढ़ा देंगे हम यहाँ पर, तो ये त्रिकोण जो नीचे ये तीन राज्य, ऐसा भी तीन राज्य, ऐसा दे दो, ये ऐसा तीन राज्य, ऐसा तीन, ये साइड थोड़ी बढ़ेगी, जैसे कर्ण थोड़ा लंबा होता है ना, हमारी हाइट सात राज्य, बेस तीन राज्य, तो सात राज्य और तीन राज्य वाला जो ट्रायंगल होगा उसका जो कर्ण की एरिया है वो इतनी यहाँ निकलेगी, ये एग्जैक्ट ऐसा दिखेगा, तो ये बाजू थोड़ी सी लंबी होगी। अभी उसका क्षेत्रफल निकाल रहे, आयत वाला मध्यवर्ती क्षेत्र का घनफल निकालते, इस आयत चतुर्थ क्षेत्र का उच्छेदनी सात राज्य है, और विष्कम्भ जो हमने देखा ना 371/113 है, मुख में एक प्रदेश प्रमाण बाहल्य है। अब यह ऐसा इसका कैसा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एक प्रदेश है यानी नहीं के बराबर, और नीचे तीन राज्य है, तो एवरेज उसका आधा निकलेगा ना, दो साइड की मिलाओ उसका आधा करो, तो तीन राज्यों का आधा डेढ़ राज्य हो जाएगा,
तो
एक का आधा नहीं करना, वो तो ठीक छोड़ दो, समझ नहीं ना, यानी ऐसा जो परिधि था नीचे उतनी परिधि ली, कितनी करीबन तीन राज्य जितनी, और अभी नीचे ऐसा उसका विस्तार तीन है पर ऊपर जीरो है, समझो ना, तो अभी उसके एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो उसके आधा जैसा होगा, तो कैसा निकलेगा, ऐसा सात राज्य है, ऐसा तीन का आधा
डेढ़
राज्य, और ऐसा तीन राज्य करीबन, ये बीच वाला निकलेगा हमको, यहाँ तक समझ में आई बात? अभी इसको पढ़ो देखो, फिर से उससे सात राज्य है ना सेकंड, और विष्कम्भ इतना है 371/113, मुख में एक प्रदेश प्रमाण बाहुल्य है ना मोटाई है, और तल भाग में तीन राज्य प्रमाण बाहुल्य है, समझ में आती है बात? ऊपर तो थिन है एकदम, वो केवल सर्कमफेरेंस है, और नीचे तीन राज्य है, क्योंकि हमने बीच वाला एक राज्य की नली निकाल ली है, इसलिए उच्छेद का प्रमाण जो सात राज्य है उससे मुख के प्रमाण को गुणा करके, मुख का प्रमाण यानी वहां की सरकमफेरेंस एरिया, एक राज्य का सरकमफेरेंस, तलभाग का बाहुल्य जो तीन राज्य है उसके आधे से अर्थात डेढ़ राज्य से गुणा करने पर, मध्यम क्षेत्र का अर्थात आयत चतुर्थ क्षेत्र का घनफल 371/113, ये उसका ऊपर का सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय सात हाइट, और तीन राज्य था वहाँ का नीचे का बाहुल्य, और ऊपर का बाहुल्य कुछ है ही नहीं वहाँ पर, इसलिए एवरेज, क्योंकि इक्वली ऊपर घट रहा है इसलिए एवरेज निकाला, समझ में आते हैं बस? जैसे हम लोकाकाश का एवरेज निकालते हैं ना, सात राज्य एक राज्य पांच राज्य एक राज्य, फिर उसको चार से भाग देते हैं, यहाँ तो दो ही लेना है, नीचे तीन राज्य ऊपर कुछ नहीं है एक्चुअली, तो तीन का ही आधा कर दिया, तो उसका उत्तर उन्होंने निकाला 34 तो पूर्णांक आए 107/226 उसका उत्तर आ गया। यहाँ तक समझ में आई अभी बात? ये बीच वाला आयत उन्होंने अलग से निकाला। अब बाजू के जो ट्रायंगल रह गए, यानी तीन राजू विस्तार है वैसे, और फिर वहां पर भी ऐसा टेपरिंग हो जाएगा साइड में, और ऊपर से भी टेपरिंग हो जाएगा। यानी अभी वो कैसे निकाला, देखो ये तो निकाल दिया ना हमने, यहां से पीस निकाला। अभी इसके आगे वाला पीस कैसे होगा? तो सात राजू उसकी हाइट होगी। अभी हमने ये तो ये पूरा राजू वाली यानी पूरा सरकमफेरेंस ऊपर लिया, अभी उसमें सिंगल पॉइंट हुआ है ऊपर, तो सिंगल पॉइंट हुआ। अब इसमें से बीच में से हमने जो मान लेते ना सात का तिगुना किया था, ऊपर तीन राजू था, नीचे मान लेते कि 21 राजू था, ये 21 के बदले एग्जैक्ट 22 प्रमाण आता है उसको ही लेते हैं। तो हमने नीचे का जो 3 पूर्णांक जो समथिंग था वो निकाल लिया बीच में से, तो बाजू में कितना है 22 में से वो पहले 3 निकाल लो, कितने रह गए? हाँ, उसका आधा इधर आधा उधर कर दो, तो उसका आधा इधर रह गया। 22 में से 3 हमने निकाल दिए, 19 रहे, 19 का आधा करो, करीबन निकालो ना, 9.5 इधर 9.5 उधर, यानी ऐसे सिंगल, क्योंकि यहाँ तो एक ही प्रदेश है। अब यहाँ वो 9.5 ऐसी बात होगी तो ये ऐसा ट्रायंगल होगा, परंतु उसको अंदर विड्थ है 3 और 3 के, ये भी 3 वाला है और ये भी 3 वाला है, तो ऐसा ये हो जाएगा 3 वाला, ऐसा उसका ये हो जाएगा एरिया, ये 3 वाली एरिया, ये 9.5 हो जाएगी, ये 1 पॉइंट हो गया है, यानी इसका भी आधा एवरेज निकालेंगे, और ये ऐसा साइड में ऐसा ट्रायंगल दिखेगा। अब इसकी एरिया बताएंगे क्या होती है। अब शेष जो त्रिकोण क्षेत्र है वे 7 राजू लंबे हैं और 113 से एक राजू को खंडित कर उनमें से 48 खंड अधिक 9 राजू भुजा वाले, अर्थात उनका अधो विस्तार 9.48/113, जो हमने 9.5 आपको बताया था करीबन, समझ में आई बात? हाँ, यहां तक समझ में आई ना बात? ये जो 2 त्रिकोण है वो 7 राजू लंबे वाले हैं, और नीचे का उसका समझो ना, हम मान लेते 9.48/113 है नीचे का उसका ट्रायंगल का बेस इतना है, इसी विस्तार को यहाँ त्रिकोण क्षेत्र की अपेक्षा भुजा कहा है। एक है 7 राजू और एक उसकी दूसरी भुजा कितनी हुई है 9.5 समझ लो, उसको हम 9.5 कहेंगे। उन दोनों त्रिकोण क्षेत्रों का भुजा और कोटि के यथा योग्य संभवित कर्ण का प्रमाण है। इन दोनों त्रिकोण क्षेत्रों को कर्ण भूमि से लेकर दोनों ही दिशाओं में बीच में से काटने पर 3-3 क्षेत्र हो जाते हैं। अब ये जो 3-3 क्षेत्र जो हमने पहले पुस्तक में शुरुआत में देखे थे, ये जो साइड वाला जो त्रिकोण क्षेत्र है ना, तो उसमें 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ऐसे दोनों को दोनों ओर से कर दिया उन्होंने। समझ में ये बात कैसे की उन्होंने? देखो देखो, ये तो हमने ऐसा बताया ना, एक बाजू का और दूसरे बाजू का। अब ये एक बाजू का ही है, उसी को उन्होंने डिवाइड कैसे किया है एक बाजू का, क्योंकि बीच वाला तो स्क्वायर तो हमने वो अलग से निकाल ही दिया था। अब इसके कैसे करना है, तो इसमें उन्होंने इस तरह से 2 भेद किए, ऐसा एक होगा, इधर एक होगा, इसको भी 3 राजू वाला और इधर एक होगा, 1, 2 और 3 ऐसे 2-2 कर लिए। फिर से देखो, अब अंदर की वो बेस वाली बात इमेजिन मत करो, बीच वाला हमने ये स्क्वायर निकाल लिया, अभी क्या है 9.5 साथ, और ऐसा रह गया। यहाँ तक ठीक है, अब आगे देखो। अब ये जो कर्ण है
दोनों साइड आएगा ना, ऐसा ट्रायंगल।
हाँ दोनों साइड, अभी हम एक ही बात किए था। अब ये जो कर्ण है इसका, ये ट्रायंगल का ये बेस है, ये हाइट है। अब इसको ऐसा काटा उन्होंने, उसके अंदर के कितने वो वीर थे उसको भूल जाओगी, इस तरह से काटा तो एक स्क्वायर हुआ और दो ट्रायंगल हो गए। फिर विशेष आगे यहाँ पर त्रिकोण क्षेत्र के भुजार कोटि का प्रमाण तो दिया है, पर कर्ण का प्रमाण नहीं दिया है। उसके निकालने की प्रक्रिया यह है, भुजा के प्रमाण का वर्ग और कोटि के प्रमाण का वर्ग जितना हो, इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का वर्ग। मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी कर्ण है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कि दोनों का वर्ग जितना हो उन्हें जोड़कर उसका वर्गमूल निकालना चाहिए। जो वर्गमूल का प्रमाण आवे वही कर्ण रेखा का प्रमाण समझना चाहिए। जैसे हम कोई भी मान लेते ना, गिनकर करेंगे हम, जैसे ये हमारा ये दो है और ये हमने तीन लिया, ये तीन इंच है, दो इंच है, तो कर्ण कितना आ जाएगा? तो स्क्वायर रूट तीन का वर्ग नौ, दो का वर्ग चार, नौ चार तेरह, तेरह का वर्गमूल ये आ जाएगा। या गिनकर भी अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तीन और तीन ही गिनो ना तो एग्जैक्ट तो आ ही जाएगा हमको, तो ये कितना आ जाता है? इस तरह। यानी ये लिखना है तो आप लिख के रखो उसको ट्रायंगल करके, ए बी सी नाम देखो। चित्र में उन्होंने नहीं दिया, ये निकालने की बात है। यानी सी कितना है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, हाँ ए वर्ग अधिक बी वर्ग। देखो ना विशेषार्थ बताया, यहाँ कर्ण का प्रमाण निकालने की विधि नहीं बताई, वो विधि बता ले कि भुजा के प्रमाण का वर्ग और कोटि के प्रमाण का वर्ग जितना हो उन्हें जोड़कर। यानी हमारी भुजा और कोटि कितने ए और बी है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकालना चाहिए। जो वर्गमूल का प्रमाण आवे वही कर्ण रेखा का प्रमाण समझना चाहिए। कुछ समझ में आती कि नहीं बात आती? उक्त प्रकार से उत्पन्न हुए इन तीन तीन क्षेत्रों में, समझ में ही? एक बाजू हमारी क्या है, सात राजू है, ऐसी करीबन साढ़े नौ थी हमारी, और ये ट्रायंगल किया, अब ये इसका आधा करके उसका एक स्क्वायर और एक ऐसा कर दिया, उसमें से बता रहे। एक एक आयत चतुर्थ क्षेत्र और दो दो त्रिकोण क्षेत्र जानना चाहिए। यहां तक बात समझ में? उनमें सात राजू उपछेद वाले आयत चतुर्थ क्षेत्र के दाएं बाएं दोनों ओर जो दो आयत चतुर्थ क्षेत्र है उनमें प्रत्येक का साढ़े तीन राजू उपछेद है, क्योंकि ये आधा किया ना, यहाँ पर पूरी हाइट थी
सात,
अभी इसका कितना है?
आधा
राजू। देखो दोनों ओर को लेना है, बीच वाली तो हमने एरिया निकाल ली, उसके एरिया निकाल कैलकुलेट कर दी है। अब एक ये बाजू का त्रिकोण रह गया और एक बाजू यहाँ का त्रिकोण रह गया, क्योंकि ये करीबन तीन है तो उसके तीन गुना ये है, इस तरह से है। अब उसमें से हमने ये बाजू निकाली, तो ये 3.5 और वो 3.5 ऐसा, ये 3.5 इसके हाइट इधर है, ख्याल में आई बात है। दाएं बाएं दोनों ओर दो दो आयत चतुर्थ क्षेत्र है, उनमें प्रत्येक का 3.5 राजु उच्छेद है तथा 226 से एक राजु को खंडित कर उनमें 161 खंडों से अधिक 4 राजु अर्थात 4.161/226 प्रमाण विष्कम्भ है। ये विष्कम्भ निकाल रहे हैं, विष्कम्भ कैसे निकालेंगे, जो हमने 9.5 करीबन निकालता उसका भी आधा हुआ। ऊपर था हमने 9.48/113 था, उसको 2 से भाग दो तो नीचे तो 226 आ जाएगा, और 9 को 2 से भाग देंगे तो 4 तो हो जाएगा, एक पूरा रह जाएगा। एक पूरे की वैल्यू होती है 113 में 48 मिला दो, कितने हो गए, ये नीचे लिखा 161, समझ में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 9.48/113 निकल उसका आधा किया, दूसरा कुछ नहीं किया। समझ में आ रही प्रेरणा बहन, एक बाजू का जो था ना विस्तार इधर का, हमने करीबन 9.5 निकाला था तो उसका और आधा करो। हाँ, तथा दक्षिण और वाम दाएं बाएं अधस्तन कोण पर 3 राजू बाहल्य है। अभी इसका आयत क्षेत्र बता रहे हैं, ऐसा कितना देखा, अभी हमने जो देखा था वो 9.5 का आधा ऐसा है, हाइट इसकी 3.5 है दोनों की। अब इसका बाहल्य अंदर कितना है, तीन राजू बाहल्य है ना, क्योंकि सर्वत्र वो 3 राजू चौड़ा है तो 3 राजू ऐसा अंदर है, नीचे की ओर 3 राजू, ऊपर टेपरिंग होगा। अन्य दक्षिण वाम कोनों पर यथाक्रम से ऊपर और नीचे 1.5 राजू बाहल्य है, क्योंकि ऊपर जो थिन था नीचे 3 राजू बाहल्य है, तो सेंटर में आकर उसका 1.5 राजू हो जाएगा, यानी ये 1.5 राजू और ये 3 राजू। पहले हमने कैसे ऊपर से नीचे
पूरा 3 है ना,
नीचे 3 है वो, ये भी ऐसा ऊपर थिन होते गए ना,
तो
कैसा 3 होगा, नीचे 3 है ऊपर 0 तक पहुंचना है उसको, तो सेंटर पर 1.5 रह गया उसका। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये एक बाजू की हम इमेजिन कर रहे हैं, ये बीच वाली जो हमने निकाली है। अब यहाँ हम जो कुछ उसका था उसमें से, ऐसी बात है ना, सामने से दिख रही है, अब उसमें से हमने स्क्वायर किया उसको, ये जो स्क्वायर किया है अब वो नीचे ऐसा 3 राजू ऐसा नीचे है, और ये यहाँ पर उसको 1.5 ही राजू हुआ है, यानी वो 1.5 राजू से 3 राजू तक ऐसा अंदर फैला है। ये वाली एरिया इमेजिन हो रही है कि आपको नहीं हो रहे, फिर से देखो, ये सामने 3 ऐसा ट्रायंगल है, उसको बीच में हमने एक आयत निकाला, ये आयत का बेस है 3 जो 3/3 ऐसा है, परंतु वो ऊपर टेपरिंग है ना, फिर तो कितना टेपरिंग है, तो ऐसा टेपरिंग है, तो ऐसा है वो, ये वाला ऐसा स्क्वायर है। यहाँ तक बात ख्याल में, वो पूरे एरिया निकाल के बता रहेंगे। हाँ बस वो तो हम जो निकालेंगे एरिया उससे कितनी कम है वो बताना है उनको। मृदंगाकार नहीं है सिद्ध करना है। हाँ बस इतनी बात। ये तो समझ में। अवशिष्ट दो कोणों पर एक आकाश प्रदेश प्रमाण बाहल्य है। अभी जो निकाले ना जो दो ट्रायंगल रह जाएंगे और अन्यत्र अर्थात बीच में क्रम से वृद्धि को प्राप्त बाहल्य है। इस प्रकार के इन दोनों आयत चतुरस्र क्षेत्रों को लेकर इन्हें उठाकर उनमें एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र को विपर्यास अर्थात उल्टा करके स्थापित करने पर सर्वत्र तीन राजू बाहल्य वाला क्षेत्र हो जाता है। देखो क्या करना चाहते हैं, यह ऐसा हुआ है। अभी इसको केवल वो बाहर का बाकी का भूल जाओ। यह ऐसा है कि नीचे तीन राजू है और ऐसा वो चार कुछ हो गया, साढ़े नौ का आधा ये बेस है और ऊपर क्या है वो डेढ़ राजू वाला थिकनेस है, नीचे तीन राजू वाला है। यह ऐसा साइड से दिखेगा, साइड से ऐसा दिखेगा और सामने से ऐसा दिखेगा इस तरह से। पीछे वाला हम नहीं देखेंगे। नीचे तीन राजू, ऊपर डेढ़ राजू, ऊपर उसका बेस। ये समझ में आती। अब ऐसा ये डेढ़ राजू तो ऊपर उसके ऊपर दूसरा उल्टा फिट कर दो। ये तीन राजू वाला उल्टा फिट कर दो। ये तीन से डेढ़ तक आया है, डेढ़ से तीन तक। सर्वत्र तीन राजू बाहल्य वाला क्षेत्र हो जाता है। वो एक राजू वाला कैसे उन्होंने किया, एक प्रमाण एक राजू प्रमाण तीन। ऊपर के एक प्रदेश प्रमाण तीन तो ऊपर के थे ना,
तो डेढ़ रहते ना, डेढ़ का डेढ़।
फिर से यहां से हम पढ़ते हैं। देखो ये चार पूर्णांक है, वहां तक समझ में आई थी ना बात। दक्षिण और वाम यानी दाएं और बाएं अधस्तन कोण पर तीन राजू बाहल्य, यहां पर तीन राजू बाहल्य। अन्य दक्षिण वाम कोणों पर यथाक्रम से ऊपर और नीचे डेढ़ राजू बाहल्य है। अवशिष्ट दो कोनों पर ये डेढ़ राजू बाहल्य है, ये तीन राजू बाहल्य है। अब एक प्रदेश प्रमाण कहाँ लिया उन्होंने, अवशिष्ट दो कोनों पर एक आकाश प्रदेश प्रमाण बाहल्य है। वही चित्र निकालो। तो दो और पांच को उन्होंने फिट करके यहां जो चित्र निकाला है, देखो इसमें दो और पांच को एक दूसरे में फिट किया। एक आकाश प्रदेश कहां से निकाला, अंदर से। अच्छा साइड से उन्होंने एक आकाश प्रदेश निकाला। मैंने जो दो स्क्वायर है ना एक और तीन के बीच में जो पॉइंट है वहां उन्होंने एक आकाश प्रदेश लिया है और इसलिए दो एक दूसरे को फिट करके ऐसी उनकी फिगर तैयार हुई है। ये दो और पांच यहाँ दिखाए तो साइड में यानी उनकी एरिया वो तीन राजू हो जाती है एक साइड में। एक प्रदेश से लेकर यहाँ पर डेढ़ और डेढ़ मिलकर तीन हुई, और एक प्रदेश और तीन प्रदेश मिलकर तीन हुई। आगे पढ़ते हैं। तो एक दूसरे पर रखने पर सर्वत्र तीन राजू बाहल्य वाला क्षेत्र होता है। इसके विस्तार को उच्छेद से गुणा कर पुनः वेद से यानी मोटाई से गुणा करने पर घनफल कैसा होगा? ये जो हमने 9.5 का आधा किया था उसको लिया है, एक बाजू का वो ट्रायंगल का, और फिर 3.5 जो हाइट है उससे गुणा किया था, और एक दूसरे को फिट करके जो 3 हुआ था उसको भी लिया। यहाँ तक ख्याल में आई बात? यानी जो दो आयत है उसका एक दूसरे के फिट करने पर ऐसा तैयार हो गया। अब अवशिष्ट जो 4 त्रिकोण क्षेत्र है वे 3.5 राजू उच्छेद वाले हैं। कोई भी दो चारों में से ले लो, 3.5 उच्छेद 226 से एक राजू को खंडित कर उनमें से 161 खंडों से अधिक 4 राजू, यानी वही हमने 9.5 का आधा निकाला था वो, अर्थात 4.161/226 राजू प्रमाण भुजा वाले हैं, क्योंकि आधी भुजा स्क्वायर को दिया, आधी भुजा त्रिकोण को दी। उन्हें कर्ण क्षेत्र से लगाकर दोनों ही पार्श्व भागों में बीच से छिन्न करने पर 4 आयत चतुरस्र क्षेत्र और 8 त्रिकोण क्षेत्र हो जाते हैं। वो त्रिकोणों के फिर उन्होंने आयत किए, पहला जो बड़ा त्रिकोण था उसके आयत निकाले, अभी जो छोटा त्रिकोण रच के उसके फिर और आयत कर दिए। यहाँ पर चारों ही आयत चतुर्थ क्षेत्रों का घनफल पहले के दोनों आयत चतुर्थ क्षेत्रों के घनफल के चतुर्थ भाग मात्र होता है, क्योंकि वो आधे का आधा हो गया ना, चौथा भाग होगा, क्योंकि चारों ही क्षेत्रों का बाहल्य के अविरोध से इकट्ठा करने पर अर्थात यथाक्रम से विपर्यास कर उल्टा रखने पर 3 राजू बाहल्य और पहले के क्षेत्र के विष्कम्भ और आयाम से अर्धमात्र विष्कम्भ और आयाम प्रमाण वाला क्षेत्र पाया जाता है। फिर शंका, इन 4 आयत चतुर्थ क्षेत्रों के मिलाने पर 3 राजू बाहल्य कैसे होता है? उसका समाधान, क्योंकि पहले बताए हुए आयत चतुर्थ क्षेत्र के बाहल्य से इस समय के आयत चतुर्थ क्षेत्रों का बाहल्य आधा ही है, और पहले के उनके उच्छेद की अपेक्षा अब के इनका उच्छेद भी आधा ही दिखाई देता है। अब शेष रहे 8 त्रिकोण क्षेत्रों को पूर्व के समान ही खंडित करने पर उनमें 16 त्रिकोण क्षेत्र और 8 आयत चतुर्थ क्षेत्र हो जाते हैं, यानी वो चौथा हिस्सा उसका हो जाएगा। पहले बताए गए 4 आयत चतुर्थ क्षेत्रों का उच्छेद से विष्कम्भ से और बाहल्य से अर्ध प्रमाण निकालकर 8 ही आयत चतुर्थ क्षेत्रों का घनफल अभी बताए गए 4 आयत क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्रों के घनफल के चतुर्थ भाग मात्र होता है। इसी प्रकार 16, 32, 64 आदि क्रम से आयत चतुर्थ क्षेत्र पहले के आयत चतुर्थ क्षेत्र के घनफलों के चतुर्थ भाग मात्र घनफल वाले होते हुए तब तक चले जाएंगे जब तक कि अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात एक परमाणु प्रदेश नहीं प्राप्त होता। देखो देखो क्या करना है अभी हमको, हमने एक बड़ा 7 ऐसा 9.5 देखा, इस तरह से देखा, पहले आए चतुर्थ को उसका अंदर तक जो कुछ कैलकुलेट किया, दोनों ओर के एक दूसरे को फिट करने पर जो हुआ, उसके आगे वाले जो यहाँ के और यहाँ के हैं उसके 1/4 वाले जो है उसके 1/4 उसके 1/4 उस ऐसा ये कह रहे हैं, एक परमाणु तक चले जाओ। इस प्रकार से उत्पन्न हुए समस्त क्षेत्रों के घनफलों के जोड़ने का विधान कहते हैं। अभी मिनिमम से शुरू करेंगे और 4 गुना 4 गुना है ना, हमने 1/4 1/4 कैलकुलेट किए, तब इनका जोड़ क्या होगा, अंतिम जो है उसको 4 गुना करेंगे। हमारे पास है ना अंतधनम गुण गुणियम, जो 4 के गुणित प्रमाण संख्या होती है उनकी टोटल कैसे करेंगे, अंतिम जो है उसको चार गुणा करेंगे, आदि विहीनम, आदि वाला एक माइनस करेंगे और फिर गुणकार चार है उसमें से एक माइनस करके उसका भाग देंगे, यह वही कहेंगे। पेज नंबर 16 पर सभी क्षेत्रों का देखो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे याद है इसलिए मैंने बताया आपको फास्ट फास्ट कितना कैच हुआ। हमारे पास चार गुना है, एक प्लस चार गुना 16 प्लस चार गुना 64, इसकी हमको टोटल करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कितने भी बार चार गुना करो, जो अंतिम संख्या है ना, अब हमने 64 मान ली, तो अभी हमारा तरीका क्या है, 64 को और चार गुना करो यानी इंटू 4 करके आदि विहीनम, आदि हमारी एक है उसमें से माइनस करो। 64 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गए, 256 आ गए। 256 में से एक माइनस करो, 255 आ गए। अब उसको हमारा गुणकार का प्रमाण 4 है, उसमें से एक बाद करो तो 3 आए, 3 से इसको भाग दे दो तो कितना आ गया, 3 8 24, 3 8 24, 1 रहे 3 5 15, इनकी टोटल 85 आती है कि नहीं करके देखो। 1 + 4 = 5 और 16 = 21 और ये उसका तरीका है। अभी हमारे पास पहली जो पहले आय चतुर्थ का क्षेत्रफल मालूम है, उसका वन फोर्थ करके गए थे परमाणु तक, तो एक को चार गुना करने पर पहले आय चतुर्थ क्षेत्रफल हमके पास है तैयार, तो हमें विधि मालूम है ना। अभी तो कैसे करेंगे देखो, सभी क्षेत्रों का घनफल चतुर्गुणित क्रम से अवस्थित है, ये समझ में आई ना बस, इसलिए उनमें अंतिम क्षेत्रफल को 4 से गुणा करके और 4 में से एक कम अर्थात 3 से भाग देने पर घनफल इतना होता है। कैसे क्या हमने उसको, हमको दो आयत चतुरस्र का मालूम था, दो आयत का कितना बताया था देखो, जो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था यहाँ पर, दो आयत का मिलाकर कितने ही लिया था, 14 पर नीचे से तीसरी लाइन 49 पूर्णांक वो है ना कुछ 217/452, अब उसको चार गुणा करना है, चार गुणा करके एक माइनस करना और फिर 3 से भाग देना, ख्याल में आती बात, चार गुणा करना एक माइनस करना और 3 से भाग देना, तो इतनी बात आती, तो 65 पूर्णांक 1320/1356 आ गया, इतना होता है। और अधोलोक के सभी क्षेत्रों का घनफल, सभी क्षेत्रों का घनफल है नहीं, ये तो हमने साइड वाले ट्रायंगल की बात की, और बीच वाला उसमें ऐड कर देना ना, ये 34 पूर्णांक 107/226 थे, नहीं समझे, देखो सेंटर में हमने देखा था ना ऐसा 1/7, उसको कैलकुलेट किया था, वो नीचे 3 राजू था, ऊपर एक सिंगल प्रदेश था, उसके एरिया उसमें मिला देना, उसकी कितनी थी वो 34 पॉइंट वो कुछ थी, वो देखो वो कहाँ कैलकुलेट किया था मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर 13 पर मिला। और अकेले बीच वाले जो त्रसनाली की जो घनफल कैलकुलेट किया था हमने, वो पेज नंबर 12 पर था, 5 पूर्णांक 337/452 नीचे से दूसरी लाइन, याद आया, तो त्रसन नाली का बीच वाला घनफल प्लस ये बीच वाली स्क्वायर हो तो लायत लंबाई उसका घनफल प्लस अभी जो ट्रायंगल बचे उसके हमें वन फोर्थ किए उसका घनफल, ये सबकी टोटल करना है। यानी अभी जो कैसे करेंगे, वो 65 पूर्णांक 1320/1356 एक, फिर 34 पूर्णांक 107/226 वो बीच वाली जो एरिया है ना, सात राजू लंबी और परिक्रमण चौड़ी और नीचे तीन राजू चौड़ी उसकी एरिया 34 पूर्णांक 107/226 प्लस 5 पूर्णांक 337/452 ये क्या है त्रसनाली का, ये सबका मिलकर अधोलोक का सभी का घनफल होता है 106 पूर्णांक 261/1356। अब ये तो नीचे का वेत्रासन का हुआ, ऊपर का निकालेंगे अभी। अब चारों ओर से मृदंगाकार ऊर्ध्वलोक रूप क्षेत्र का घनफल निकालते हैं, उसमें एक राजू चौड़े, सात राजू लंबे और गोल आकार वाले सूची रूप क्षेत्र का घनफल पहले अधोलोक में कहे गए विधान से निकालने पर 5 पूर्णांक 337/452 राजू इतना होता है, यानी बीच वाली त्रसनाली जो ऊपर के सात राजू की। इस सूची को ऊर्ध्वलोक के मध्य भाग से निकालकर पृथक स्थापित कर देना चाहिए, वो हमने निकाल कर बाजू में रख दी। अब लोक को मध्य लोक से काटने पर जो दो भाग पहले हुए थे उनमें के ऊपरी अर्ध भाग को पांच राजू है विष्कम्ब जहां पर, ऐसे ब्रह्मलोक के अंतस्थित प्रदेश पर बीच से खंडित कर उसमें से एक खंड को पृथक स्थापन कर बचे हुए खंड को मध्य में ऊपर से नीचे तक फाड़ कर पसारने से सुपा के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है। अभी जो मृदंगाकार है तो जो ऐसा मृदंगाकार जो है ऊपर नीचे उसको बीच में काटेंगे तो नीचे तो सात राजू का परिघ होता, अब यहाँ पांच राजू का परिघ मानना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस वही है। फिर उसको डबल करेंगे, नीचे क्या किया, नीचे सात राजू का परिघ किया उसको फाड़कर हमने वो 22 बनाया था और ऊपर उतनी एरिया रखी थी, यहाँ ऐसा ही करना, एक करीबन 5 से 15 इतनी उसकी परिधि हो जाएगी नीचे की, कैलकुलेशन ऐसा ही करेंगे। देखो सुपा के आकार वाला हो जाता है, नीचे से छठी लाइन, उसके मुख का विस्तार 371/113 होता है, यानी एक राजू की परिधि, ये ख्याल में आ रही ना, इमेजिन कर सकते हैं। तथा तल विस्तार 15 पूर्णांक 96/113 ये क्या है, पांच राजू की परिधि। पहले हमने सात राजू की परिधि निकाली थी, यहाँ पांच राजू की परिधि। इस सूर क्षेत्र के मुख में मोटाई आकाश के एक प्रदेश प्रमाण है, क्योंकि ऊपर सिंगल से शुरू किया, अब नीचे बेस कितना होगा, यहाँ पर पांच राजू में से एक राजू निकाल लिए बीच में से, तो चार का आधा दो राजू, जैसे नीचे हमने तीन राजू विस्तार देखा था, यहाँ दो राजू वाली बात है। और तल के मुख्य प्रमाण मध्य भाग में दो राजू मोटाई है, पुनः क्रम से हानि को प्राप्त होती हुई अर्थात कम होती हुई इसी तल भाग के दोनों कोनों पर आकाश के एक प्रदेश प्रमाण मोटाई है। समझ में आती है बात, स्प्रेड आउट कर दिया तो, स्प्रेड आउट कर दिया तो यहां तो कितना था, दो राजू, दो राजू का स्प्रेड आउट कर दिया तो ऐसे कोने में एक थिन लाइन आ गई और फिर वो ब्रॉड होकर ये दो राजू हो गए। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, ये ऐसा स्प्रेड आउट कर दिया, ऐसा तीन राजू था, तीन राजू, तो ये भी ऐसा हो जाएगा, एक प्रदेश प्रमाण थिननेस एक साइड में आ जाता है। इस सूर्प क्षेत्र को मुख विस्तार प्रमाण विष्कम्भ से खंडित करने पर, यानी बीच वाली एरिया हमने निकालेंगे अलग, 3.5 राजू हाइट वाली और ऐसे बीच वाली स्क्वायर एरिया निकाल देंगे, दो त्रिकोण क्षेत्र और एक आयत चतुरस्र क्षेत्र हो जाते हैं, बीच वाला आयत चतुरस्र, दोनों बाजू दो त्रिकोण, उनमें से पहले आयत चतुरस्र क्षेत्र का जो 3.5 राजू लंबा ये उसकी हाइट है और तीन राजू से कुछ अधिक राजू चौड़ा है, क्योंकि जो 371/113 उतना चौड़ा है, तल में दो राजू है, जो जैसे हमने नीचे का सेंटर का निकाला था वैसे ही, और मुख में एक आकाश प्रदेश है, तो उसके एवरेज एक राजू मिलेगा। ऐसे आयत चतुर्थ क्षेत्र का घनफल निकालते हुए इस प्रकार है, विषकम्भ 371/113 जो एक राजू की परिधि, उससे सात द्वितीयांश ने 3.5 को गुणा कर, पुनः उसे मोटाई के प्रमाण एक राजू से गुणा करने पर, एक राजू क्या है, दो राजू और जीरो का एवरेज। ये एक राजू आया, मध्यम अर्थात आय चतुर्थ क्षेत्र का घनफल आ जाता है। ये तो सेंटर वाला, अभी साइड में त्रिकोण रहेगा, ये उसका प्रमाण, ये जो बताया उन्होंने 371/113 एक राजू का परिधि 3.5 सात द्वितीयांश जो है वो ऊर्ध्वलोक का भी आधा हाइट हुई, मृदंगाकार है ना, आधा मृदंग लिया, और एक राजू जो है ये नीचे बेस दो राजू था और ऊपर टेपरिंग होकर एक प्रदेश हुआ, इसलिए वहाँ एक राजू उसका एवरेज लिया, सबका घनफल 11 पूर्णांक 111/226 इतना होता है। ये समझ में आई बात, ये बीच वाली एरिया है, अभी बाजू में जो ट्रायंगल है इधर और इधर उसकी एरिया निकालेंगे। इतना था शेष, जो दो त्रिकोण है जो कि 3.5 राजू ऊंचे तथा एक राजू को 113 से खंडित कर उनमें 32 खंड से अधिक 6 राजू अर्थात 6.32/113 राजू चौड़े हैं, क्योंकि जो टोटल हमने नीचे की परिधि निकाली है उसमें से बीच वाली परिधि माइनस करना। अभी यहां समझो ना, 5 के हमने 15 लिए, 3 गुना ले लो, 5 त्रिक तो 15 होती है, इसमें एक त्रिक 3 माइनस करो तो 12 रह जाएंगे, इसमें से 6 पूर्णांक कुछ अधिक आ जाएगा, तो उसमें से वो पहली वाली माइनस करो। क्या करना है देखो, पहले जो किया वैसा ही करना है, ऊपर को हमने स्प्रेड आउट किया गोल को तो करीबन 3 राजू और समथिंग हुआ, जिसको हम 371/113 कहते हैं, हम उसको 3 कहेंगे। अब नीचे के 5 राजू की परिधि निकालो, 15 ले लेते हैं, तो 15 में से बीच में 3 है, तो 15 में से 3 गए तो 12 रहे, इधर 6 और इधर 6, उसके बदले इन्होंने 6.32/113 कह लिया। हम आपको सॉल्व आसान तरीका बता रहे, करीबन 6 है नहीं, इधर 6 इधर 6, अब ऊपर एक प्रदेश और नीचे 6 और बीच में 3 राजू और नीचे टेपरिंग ऐसा पीछे की बाजू, इस तरह से हो जाएगा। देखो ये नीचे से पांचवी लाइन 6.32/113 राजू चौड़े, यहां तक समझ में आई बात, उन्हें पहले के समान ही मध्य में से खंडित कर, अभी उसमें एक एक आयत करेंगे, ट्रायंगल का आयत करेंगे, उनमें उत्पन्न हुए 4 त्रिकोण क्षेत्रों को दूर रखकर, यानी त्रिकोणों को अलग रखो, दो आयत को एक में फिट कर दो, दोनों आयत चतुर्थ क्षेत्रों को जो कि 2.25 राजू ऊंचाई वाले, 2.25 क्यों, 3.5 का आधा, इस वहाँ लिख के रखो तो हमें ख्याल में आता है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, 2.25 कहाँ से निकाले, 3.5 का आधा, 3 का आधा होता है 1.5 और आधे का आधा होता है 1/4 तथा 113 से एक राजू को खंडित कर उनमें 16 खंडों से अधिक 3 राजू अर्थात 3.16/113 राजू प्रमाण चौड़े तथा क्रमशः 2.10 और 1 राजू मोटे हैं, उनके घनफल को निकालते हैं। जैसे पहली पंक्ति थी वैसे यहाँ पर है, देखो उसी का विशेषता, यहाँ पर जो आयत चतुरस्र क्षेत्र की मोटाई क्रमशः 2, 1, 0 और 1 राजु प्रमाण कही है, उसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मलोक के पास वाले भीतरी भाग की मोटाई 2 राजु है। समझने हमने, क्योंकि वो 1 राजु बीच में से हमने निकाल दिया तो बाजू में 2 राजु हुए, उसी के बाहरी भाग की मोटाई 1 राजु है। कर्ण रेखा वाले क्षेत्र की मोटाई 0 या 1 प्रदेश है। देखो ऐसे ना, 2 फिर 0 तक लेना है तो बीच में 1 राजु रह जाती है। कर्ण रेखा वाले क्षेत्र की मोटाई 0 या 1 प्रदेश है और कोटि रेखा के भाग वाले ऊपरी क्षेत्र की मोटाई 1 राजु है, क्योंकि नीचे से 2 राजु से ऊपर 0 तक पहुंचना है तो बीच में उसकी मोटाई तो 1 राजु थी। समझ में आ, तो दोनों ही स्क्वायर को एक दूसरे पर फिट करने से वो समान हो जाएंगे। वही इस प्रकार है, एक आयत चतुर्थ क्षेत्र के ऊपर दूसरे आयत हो गया समय। हाँ कल देखेंगे। अच्छा क्या याद किया, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कहलो सो सदा देता हूँ।